मेरे अत्यंत प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 18 सितंबर 2020 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस AFEIS के लाइव मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि हम अपने नज़रियों को कैसे समझें, कैसे उसे पकड़ें और इसके बाद कैसे उसमें धीरे धीरे परिवर्तन लाएं, लगभग इस विषय के अब हम अंतिम छोर पर पहुंच गए हैं और यूं मान लीजिए कि आज इसके बारे में मैं अब आखिरी बात कर रहा हूं। जो छोटी छोटी दूसरी बातें रह गई हैं आज मैं उन्हें अपने इस प्रोग्राम में समेटना चाहूंगा। जो महत्वपूर्ण तीन बातें थी वे बहुत विस्तार के साथ मैंने आप सबके सामने रखी हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी ऐसी बहुत सी व्यावहारिक बातें होती हैं जो हमारे ध्यान में नहीं आती, पकड़ से छूट जाती हैं और अगर वे भी हमारे परिधि में आ जाएं, यानी कि उन पर भी अगर हमारा थोड़ा बहुत भी ध्यान चला जाए तो शायद नज़रिए को बदलने की जो हमारी कोशिश है वो और ज़्यादा आसान हो जाती है और ज़्यादा सुनिश्चित भी हो जाती है। आइए इसकी भी शुरुआत मैं एक बहुत ही ताजे प्रसंग से करता हूँ। आप लोगों को याद होगा कि अभी मैंने एक फिल्मी गीत के बारे में बात की थी, अगर तुम साथ हो, और इसके माध्यम से मैंने कैसे इनका समुचित आनंद उठाया जा सकता है या यूं कह लीजिए कि सुनने की क्या कला और सुनने का क्या विज्ञान होता है उसके बारे में बहुत विस्तार से बात की थी, अगर तुम साथ हो। फ्रेंड्स, इस गीत पर मेरे पास एक मेल आया, एक ही मेल आया और ये अच्छी बात है कि सिर्फ एक ही मेल आया और उस मेल में उन्होंने इस गीत के प्रति अपनी नाराजगी दर्ज कराते हुए ये कहा कि सर ये क्या प्रेम वेम का कुछ इसी तरह की भाषा थी, गीत आपने ले लिया है, इसके जगह तो अगर मुझे ये पसंद नहीं आया और इसकी जगह अगर आप राष्ट्र प्रेम का कोई गीत लेते तो कोई बात भी थी और वो ज़्यादा अच्छा होता। चलिए ठीक है, ये उनकी अपनी राय है और उनको अपनी राय रखने का पूरा हक है, लेकिन जो राय होती है उनके आधार पर हम व्यक्ति के चरित्र, व्यक्तित्व, उसकी सोच समझ और फिर सामूहिक चेतना से उसका जुड़ाव और कितना सही है कितना गलत है इसका मूल्यांकन तो कर ही सकते हैं। तो अब आप देखिए कि अगर हम नजरिए के लिहाज से इस उदाहरण को लें तो साफ है कि जिस व्यक्ति ने भी यह मेल लिखा उसका नजरिया बन चुका है कि ये जो प्रेम प्यार के जो रोमांस के गीत होते हैं या और जो दूसरे तरह के गीत होते हैं, चाहे फिर वो लोक गीत हों, विवाह के गीत हों, ये सब फालतू की बातें हैं, केवल जो देश प्रेम से संबंधित गीत हैं वही वास्तविक गीत हैं और इसका मतलब ये है कि हमारा जो मन है, मस्तिष्क है, वो देश प्रेम से बिल्कुल सराबोर होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, प्रशंसनीय बात है, लेकिन क्या केवल यही होना चाहिए? ये सोचने की बात है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सबके साथ यह भी हो? या अगर मैं अपने देशभक्ति को प्रमाणित करना चाहता हूं तो उसको प्रमाणित करने के लिए क्या मेरे पास केवल एकमात्र यही उपाय है, या कि मैं देशभक्ति के नाम पर कुछ ऐसा कर रहा हूं जिससे बिना कहे ही यह सिद्ध हो जाए कि नहीं ये बहुत बड़ा देशभक्त है? तो दोस्तों, अब अगर हम नजरिए के लिहाज से इसके अलग अलग कोण देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह जो नजरिया है यह बहुत ही बंद नजरिया है, एक क्लोज्ड साइकिल में ये बंद है, एक क्लोज बिल्कुल वृत्त में बंद है जिसके लिए कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाजे नहीं है, कोई छेद नहीं है। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर कोई ऐसा नजरिया हुआ तो आप उसमें बदलाव की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ऐसा व्यक्ति तो अपने आप को बिल्कुल मान करके चलता है कि मैं बिल्कुल सही हूं, मैं ही ब्रह्मांड के केंद्र में हूं, और सीधी सी सोच ऐसे लोगों की यह होती है कि मुझे जो अच्छा लग रहा है मुझे वही मिले, मैं जो करना चाहता हूं मैं वही करना चाहूंगा, मैं जो खाना चाहता हूं मैं वही खाऊंगा, मुझे जो सही लगता है वही सही लगता है। चलिए, वो सब तो बात ठीक है कि यही सही है, लेकिन इसके विपरीत सारी चीजों को वो नकारता है। जो मुझे पसंद नहीं है वो सब बेकार हैं, जो मेरे लिए गलत हैं वो बिल्कुल गलत है, सबके लिए गलत है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां जो नजरिया तैयार किया गया है वो बहुत कठोर नजरिया है, बहुत कठोर नजरिया जिसमें बदलाव की कोई संभावना, कोई गुंजाइश नहीं है। अब यहां मेरा एक आप सबसे प्रश्न है, जैसे आपके पास कोई चीज है, राइट, और मैं वही चीज आपको देता चला जाऊं तो क्या आपका विस्तार होगा, क्या आपका विकास होगा? जैसे मान लीजिए कि आप किसी बात के बारे में जान, आपके पास मान लीजिए कि इतिहास का ज्ञान है, चलिए मैं आपको इतिहास का ज्ञान इतिहास का ज्ञान इतिहास का ज्ञान देता चला जाता हूं, तो क्या होगा? बस एक लाभ आपको जरूर हो सकता है कि अदरवाइज आप भले इतिहास को कुछ भूल जाते तो अब आप भूल नहीं पाएंगे क्योंकि बार बार इतिहास को दोहरा रहे हैं। लेकिन इतिहास का ज्ञान अपने आप में एक विशिष्ट ज्ञान तो हो सकता है लेकिन संपूर्ण ज्ञान तो नहीं है। तो अगर इतिहास ऑलरेडी आप जानते हैं, और मैं आपको भूगोल बता रहा हूं, मैं आपको समाजशास्त्र के बारे में बता रहा हूं, मैं आपको फिलॉसफी के बारे में बता रहा हूं, मैं आपको कुछ फिजिक्स के बारे में बता रहा हूं, मैं कुछ आपको दुनिया के बारे में बता रहा हूं, तो ये वो चीजें हैं जो आपके पास नहीं है, जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते। लेकिन नो डाउट कि आप इतिहास से बहुत प्रेम करते हैं और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपना विस्तार चाहते हैं, आप अपना विकास चाहते हैं, आप अपने नजरिए में बदलाव चाहते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इन विषयों की भी जानकारी होनी चाहिए? और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इतिहास के बारे में जो भी अभी आपका ज्ञान है, आपकी अपनी समझ है, आपका अपना जो नजरिया है वो है, लेकिन जैसे ही आप इन दूसरे विषयों को पढ़ेंगे, इसी इतिहास के बारे में आपका जो ज्ञान है वो और गहरा हो जाएगा और व्यापक हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर यह कि इतिहास के बारे में आपका नजरिया बदल जाएगा। दोस्तों, मुझे इसी तरह की एक घटना और याद आ रही है। उस समय मैं एक कॉलम लिखा करता था एक अखबार में, और उसमें मैंने जब कम्युनिकेशन के बारे में लिखा कि ये जो कम्युनिकेशन है ये कितना प्रभावशाली होता है और इसके लिए लोग क्या क्या उपाय करते हैं, तो उसमें मैंने हिटलर के जो कम्युनिकेशन की नीति थी, है ना, जो जर्मनी के तानाशाह हैं, उनका उदाहरण दिया। मीन कैंप जो उनकी अपनी आत्मकथा है उसमें उन्होंने बहुत विस्तार के साथ लिखा है कि जब मैं कोई सभा करता था तो सभा में आने वाले लोगों को मैं सम्मोहित कर सकूं तो उसके लिए मैं क्या क्या उपाय करता था। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा है, तो मैंने उसकी चर्चा की। उस पर भी मुझे इसी तरह की प्रतिक्रिया बाद में मिली। उस समय तो पत्रों का जमाना था, लेटर्स आते थे, मेरे पास लेटर्स कुछ आए कि सर आपको इसके लिए कोई और दूसरा उदाहरण नहीं मिला। अब देखिए कि हिटलर अगर एक बात कह रहा है, हम बुरे व्यक्ति से भी तो सीख सकते हैं, तो क्या हम रामचरित मानस से रावण को किनारे कर सकते हैं? तो ये जो नजरिए होते हैं सच पूछे रिजेक्ट करने के, स्वीकार करना अस्वीकार करना अलग बात है, उसको आप तर्क के आधार पर अस्वीकार करिए, लेकिन अपने आप को ऐसी असहमतियों के प्रति खुला रखिए। जब आप चारों तरफ से अपने आप को खुला रखेंगे, जो आप नहीं जानते हैं उन्हें आने देंगे, यहां तक कि जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं उन्हें भी थोड़ा बहुत आने दीजिए, उनका मूल्यांकन कीजिए ना। मूल्यांकन करने के बाद आप बिल्कुल रिजेक्ट कर दीजिए, नो डाउट, आप मानने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है, आप रिजेक्ट कर दीजिए, लेकिन कम से कम सुनिए, धैर्य से सुनिए, उसका विश्लेषण कीजिए, क्योंकि ये एक नई चीज है। यही आपके नजरिए को बदल सकती है, आपको समृद्ध कर सकती है, आपको आगे बढ़ा सकती है, और सच मायने में यह है कि आपको संपूर्ण बना सकती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोगों ने काफी विस्तार के साथ बातें की हैं, और लगभग अब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके लिए हो सकते थे वो सब मैं आप लोगों के सामने रख चुका हूं। वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, छोटी छोटी और बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन अब मैं विधिवत रूप से इस विषय को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। साथ ही दो दिनों के बाद चूंकि आप लोगों से मुलाकात हो सकेगी, इसीलिए बहुत बहुत अच्छी स्मृतियों के साथ आप लोगों का अभिवादन भी करना चाहूंगा। नमस्कार।